पृष्ठ संख्या 327 अध्याय 14 12वें नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मानव की भौतिक प्रगति के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में कृषि एवं पशुपालन सर्वप्रथम प्रारंभ हुए। वे मानव समाज जो आखेट एवं संचय की अर्थव्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाए, वे सभ्यता के विकास नहीं कर सके। कांस्य काल की सभ्यताओं के उदय तथा विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था ने प्रस्तुत की। नवपाषाण काल की इस महत्वपूर्ण भूमिका को लक्ष्य करके ही प्रसिद्ध विद्वान गार्डन चाइल्ड ने इस परिवर्तन को नवपाषाण काल की क्रांति नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा था। आजकल प्रायः यह कहा जाता है कि मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल में परिवर्तन आकस्मिक एवं अप्रत्याशित नहीं था। नवीन अनुसंधानों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि आखेट एवं संचय से खाद्यान्न उत्पादन तथा पशुपालन के रूप में परिवर्तन क्रमिक गति से धीरे धीरे हुआ। जान लुब्बक ने पाषाण उपकरणों के वैशिष्ट्य के आधार पर सन 1865 में पाषाण काल को पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया था। इस विभाजन के अधोलिखित अन्य मानदंड प्रस्तावित किए गए थे। एक, पुरापाषाण काल में पाषाण उपकरणों का निर्माण प्रधानतः फलकीकरण की प्रविधि से किया जाता था, जबकि नवपाषाण काल में पाषाण उपकरणों को अभीष्ट आकार देने के लिए फलकीकरण के पश्चात गढ़ना, पैकिंग, घिसना, ग्राइंडिंग तथा चमकाना, पॉलिशिंग पड़ता था। दो, पुरापाषाण काल में जिन पशुओं का शिकार किया जाता था वे अब विलुप्त हो गए हैं, जबकि नवपाषाण काल के पशुओं के वंशज आज भी मिलते हैं। तीन, पुरापाषाण काल में मानव अपने भरण पोषण के लिए आखेट एवं प्रकृति प्रदत्त फल फूलों तथा अन्य खाद्य सामग्री पर निर्भर था। नवपाषाण काल में खाद्यान्न उत्पादन और पशुपालन प्रारंभ हो गया था। सन 1865 में लुब्बक द्वारा प्रस्तावित उपयुक्त परिभाषा में अनुसंधानों एवं खोजों के फलस्वरूप प्राप्त नवीन जानकारी के परिप्रेक्ष्य में यथेष्ट परिष्कार तथा पृष्ठ संख्या 328 परिवर्धन किए गए हैं। नवपाषाण शब्द अब अनेकार्थक हो गया है। ऐसी स्थिति में इसका ठीक ठीक अर्थ बतलाना अपेक्षाकृत कठिन हो गया है। यह कहा गया है कि विभिन्न संदर्भों में नवपाषाणिक शब्द की का अर्थ है एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, एक ऐसी पुरावशेष सामग्री जिसमें मिट्टी के बर्तन प्राप्य हैं, पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का समूह, स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों की एक ऐसी संस्कृति जिसमें पॉलिशदार पाषाण उपकरणों या मिट्टी के बर्तनों का अभाव है। नवपाषाण काल के संबंध में विद्वानों ने कतिपय भ्रांत धारणाएं बना लिया है। उदाहरणार्थ, बहुत समय से यह माना जाता रहा है कि कृषि का विकास सर्वप्रथम केवल मध्य पूर्व के क्षेत्रों में हुआ था। वहां पर कृषि कर्म की शुरुआत इसलिए हुई कि मध्य पूर्व के हरे भरे घास के मैदान तेजी से मरुस्थलों में परिवर्तित हो रहे थे, जिसके फलस्वरूप वहां पर निवास करने वाले लोगों के समक्ष अपने अस्तित्व की रक्षा की जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। मानव समुदाय तथा पशु मरुस्थलों में परस्पर एक दूसरे के समीप रहने के लिए बाध्य हुए। इन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ किए गए। 20वीं शताब्दी ईस्वी के 40वें दशक के समय से लेकर आज तक हुई नवीन खोजों, नए अनुसंधानों एवं सम्यक विचार मंथन के फलस्वरूप नवपाषाण काल के संबंध में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई है। उपर्युक्त धारणाओं में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उनमें से कुछ तो निश्चयन गलत साबित हुई है, कतिपय अन्य के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है, जबकि अन्य अनेक के संबंध में प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। कृषि कर्म का उदय एवं विकास किसी बढ़ते हुए संक्रमणात्मक अभाव के फलस्वरूप नहीं हुआ। अकाल की विभीषिका से पीड़ित और अभाव की काली छाया में निवास करने वाले लोगों के पास कृषि कार्य जैसे मंद, अत्वरित प्रयोग तथा परीक्षण करने के लिए साधन एवं समय नहीं रहा होगा। मानव के लिए उपयोगी घासों के पौधों में चयन के द्वारा सुधार ऐसे लोगों द्वारा किया गया होगा जो आवश्यक आवश्यकताओं की सीमा से पर्याप्त ऊपर जीवन यापन कर रहे थे। कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्राचीनतम प्रमाण पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम के अनुकूलता, उपयुक्त जंगली पौधों तथा पशुओं की उपलब्धता और मानव की समुन्नत तकनीकी प्रगति के रूप में इसके लिए अनुकूल एवं अपेक्षित साधन प्राप्त थे। कृषि तथा पशुपालन का विकास साथ साथ हुआ अथवा दोनों का विकास अलग अलग क्षेत्रों और विभिन्न समयों में हुआ। इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना अपेक्षाकृत कठिन है। इतना निश्चित है कि ये दोनों ही शीघ्र एक दूसरे के पूरक बन गए और कृषि तथा पशुपालन की मिश्रित अर्थव्यवस्था ग्राम्य जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। कृषि तथा पशुपालन के विकास के बाद भी जंगली जानवरों के शिकार और कंद मूल तथा फल फूल आदि का संचय होता रहा। पृष्ठ संख्या 329। कृषि तथा प्रचलन सर्वत्र एक ही समय में नहीं हुआ। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य पश्चिमी एशिया के कम 3 क्षेत्रों में कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ हुआ। 1. जगरोस पर्वत क्षेत्र, 2. लेवा, सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, 3. दक्षिणी तुर्की, टर्की। 6वीं-5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरी अफ्रीका में मिस्र और एशिया में तुर्किस्तान से लेकर सिंध तक के क्षेत्र में कृषि पशुपालन का प्रचलन हो गया था। चीन के कतिपय क्षेत्रों में भी लगभग इसी समय कृषि के प्रचलन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 4वीं-3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पहले पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में तत्पश्चात समशीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में कृषि होने लगी थी। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में कृषि का विकास पुरानी दुनिया की भांति नहीं हुआ। यहाँ कृषि का विकास निश्चित रूप से स्वतंत्र आविष्कार के फलस्वरूप हुआ। दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका में आरंभिक कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। 1. पेरू का तटीय क्षेत्र, 2. मेक्सिको, 3. संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। उपलब्ध तिथि क्रम के अनुसार उद्भिज कृषि लौकी मटर आदि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में और अनाज मक्का आदि का उत्पादन 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। अमेरिका महाद्वीपों में प्रागैतिहासिक काल में पालतू पशुओं का अभाव था, इसलिए वहां का सामाजिक संगठन पुरानी दुनिया के समकालिक सामाजिक संगठन से नितांत भिन्न प्रकार का था। पश्चिमी एशिया ने मानव को जौ, गेहूं, दलहन तथा तिलहन आदि के रूप में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए। दक्षिण पूर्व एशिया से धान तथा अमेरिका से मक्का के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध हुए। वस्त्र निर्माण हेतु कपास की कृषि भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रचलित हुई। भेड़ बकरी और गाय बैल आदि मवेशियों को भी सर्वप्रथम पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में ही पालतू बनाया गया। सुअर और गधे भी नवपाषाण काल में ही इस क्षेत्र में पाले गए। घोड़े को संभवतः पहले पहल धातु युग में सवारी के लिए पालतू बनाया गया। नवपाषाण काल में कृषि के विकास के फलस्वरूप बढ़ईगिरी में काम आने वाले पाषाण उपकरणों का विशेष रूप से निर्माण किया गया। कुल्हाड़ी के अतिरिक्त वसूला, रुखानी आदि प्रमुख पाषाण उपकरण थे। इनके अलावा हसिया, सील लोढ़ा, ओखली आदि अन्य पाषाण उपकरण तथा उपादान भी उल्लेखनीय हैं। दंतूर, कटक प्रविधि से निर्मित लघु पाषाण उपकरणों का प्रचलन इस काल में भी मिलता है। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण नवपाषाण काल की एक अन्य प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यद्यपि सर्वत्र प्रारंभ से ही मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते हैं, प्रारंभ में पृष्ठ संख्या 330 मिट्टी के बर्तन हस्त निर्मित होते थे। बर्तनों के निर्माण में मंद गति के चाक टर्न टेबल को इस दिशा में प्रगति का अगला कदम माना जा सकता है। चाक का आविष्कार मानव की तकनीकी प्रगति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक मिट्टी के बर्तनों के में अलंकरण बहुत कम मिलता है। चाक के प्रचलन के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की सतह पर चित्रकारी की प्रक्रिया भी विशेष लोकप्रिय हुई। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त नवपाषाण काल के पुरास्थलों से प्राप्त तकुए तथा करघे के मृण्मय पुरावशेषों से यह इंगित होता है कि ऊन, सन और कपास के धागों से वस्त्र तैयार किए जाते थे। कृषि तथा पशुपालन आदि के फलस्वरूप लोगों के जीवन में स्थायित्व का संचार हुआ। सुनिश्चित खाद्यान्न व्यवस्था के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। सूखा और प्राकृतिक आपदाओं और किसी एक मानव समूह द्वारा दूसरे पर अप्रत्याशित आक्रमण के संकट को छोड़कर मानव का जीवन पुरापाषाणिक कालों की तुलना में काफी सुरक्षित हो गया था। नवपाषाण काल का क्षेत्रीय विभाजन। भारत में कर्नाटक प्रांत तत्कालीन मैसूर राज्य के लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से सन 1842 में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण तत्कालीन मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी M.H. कृष्ण द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे। सन 1860 में H.P. ले मसूरिये को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस घाटी से नवपाषाण काल के कतिपय उपकरण प्राप्त हुए थे। तदनंतर इस प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रतिवेदन बुंदेलखंड, दक्षिण तथा पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों से समय समय पर होता रहा। रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक पुराविद ने दक्षिण भारत के कई स्थानों पर स्थित राख के ढेरों को नवपाषाणिक बतलाया था। उसकी यह धारणा थी कि राख के ये टीले इस बात का संकेत करते हैं कि नवपाषाण काल के लोग एक स्थल पर अपने पालतू पशुओं को लंबे समय तक बांधते रहे। इस तरह एक स्थान पर गोबर इकट्ठा होता रहा। बाद में गोबर के उस ढेर को जला दिया जाता था। दक्षिण भारत के राख के ये टीले इस बात की ओर इंगित करते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया इस क्षेत्र में काफी लंबे समय तक चलती रही होगी। लेकिन ब्रूसफुट को दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में अन्य किसी तरह की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी थी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नवपाषाणिक जो उपकरण इकट्ठे किए गए थे उनमें कुल्हाड़ियों की संख्या सबसे अधिक थी। अन्य नवपाषाणिक उपकरणों में बसुले, छेनिया, रुखानिया तथा हथौड़े आदि थे। ये सभी उपकरण किसी पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि धरातल से प्राप्त हुए थे। सन 1947 में मार्टिमर व्हीलर ने कर्नाटक प्रांत के चित्रदुर्ग जिले के मोलकामुरु तालुका में स्थित ब्रह्मगिरी नामक पुरास्थल का उत्खनन कराया, जिससे दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के पृष्ठ संख्या 331 सांस्कृतिक उपादानों के साथ ही साथ उसके संभावित कालानुक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। तब से लेकर आज तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अनेक नवपाषाणिक पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है। भारत में नवपाषाण काल की संस्कृतियों के अनुसंधान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उनके फलस्वरूप नवपाषाणिक संस्कृतियों के विभिन्न पक्षों के संबंध में हमारी जानकारी काफी बढ़ी है। कालानुक्रम की दृष्टि से भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों की नवपाषाणिक संस्कृतियाँ समकालिक या एक दूसरे के थोड़ा आगे पीछे विकसित हुई ऐसा प्रतीत होता है इन संस्कृतियों में। तथापि उल्लेखनीय क्षेत्रीय विभेद भी दृष्टिगोचर होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों का उनकी प्रमुख विशेषताओं तथा कालानुक्रम आदि के आधार पर भिन्न भिन्न ढंग से विभाजन किया है। V.D. कृष्ण स्वामी ने सन 1960 में चार क्षेत्रों में भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों का विभाजन किया था। सन 1964 में B.K. थापर ने उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में नवपाषाण काल की संस्कृतियों का वर्गीकरण उस समय तक उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर किया। अल्विन दंपत्ति ने भारत की विभिन्न नवपाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन करते समय सन 1968 में इनको निम्नलिखित पांच वर्गों में विभाजित किया। अ, उत्तरी वर्ग कश्मीर घाटी। ब, दक्षिणी वर्ग गोदावरी के दक्षिण का क्षेत्र। स, पूर्वी वर्ग असम का क्षेत्र। द, मध्यवर्ती वर्ग गंगा के दक्षिण का पठारिक क्षेत्र। और य, पूर्वी मध्य वर्ग बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पर्वतीय क्षेत्र। सन 1975 में बीके थापर ने जो संशोधित सांस्कृतिक विभाजन प्रस्तावित किया, उसमें अलविन दंपत्ति के उपर्युक्त 5 वर्गों में उत्तरी पश्चिमी एक छठवां वर्ग और जोड़ दिया। उत्तरी पश्चिमी वर्ग में पाकिस्तान के बलूचिस्तान एवं सिंध प्रांत में विकसित होने वाले नवपाषाणिक संस्कृतियों को भी सम्मिलित किया गया। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों को अधोलिखित 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। 2. विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति। 3. दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। 4. मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। 5. मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति। और 6. पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। कश्मीर घाटी का आकार एक नाव की तरह है, जिसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण पीर पंजाल की पर्वतमालाएं करती हैं और उत्तरी पूर्वी सीमा हिमालय की चोटियां बनाती है। झेलम नदी प्रमुख है। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम की घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख पुरास्थलों में बुर्जहूम पृष्ठ संख्या 332, गुफ कराल तथा मातंड का उल्लेख किया जा सकता है। नवपाषाण काल के पुरास्थल करेवा से निर्मित ऊंचे सोपानों पर स्थित मिलते हैं। करेवा मिट्टी का जमाव प्राचीनतम काल में झीलों से हुआ, जो बाद में सूख गई। गेल कैम्ब्रिज अभियान दल के दत्तेरा तथा पीटरसन ने सन 1935 में बुर्जहूम की खोज तथा यहाँ पर परीक्षणात्मक उत्खनन कराया था। कालांतर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सन 1959-60 से 1963-64 तक 4 उत्खनन सत्रों में टीएन खजांची की देखरेख में बुर्जहूम का सुव्यवस्थित ढंग से उत्खनन कराया गया। गुफ कराल नामक पुरास्थल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की त्राल तहसील में श्रीनगर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 41 किमी की दूरी पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज सन 1962-63 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था तथा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की प्रागैतिहासिक शाखा के तत्वावधान में एके शर्मा ने सन 1981 में यहां पर उत्खनन कराया। बुर्जहूम तथा गुफ कराल के उत्खननों के परिणाम स्वरूप अधोलिखित 3 प्रमुख सांस्कृतिक कालों के संबंध में जानकारी हुई। 1. नवपाषाणिक काल। 2. बृहत पाषाणिक काल। 3. ऐतिहासिक काल। रेखाचित्र 1. बुर्जहूम समेकित अनुभाग की रूपरेखा, सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 333। नवपाषाण काल से संबंधित प्रथम काल की संस्कृति को बुर्जहूम के उत्खनन से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अ तथा ब दो उपकरणों में विभाजित किया गया है। गुफ कराल के उत्खनन से उत्तरी भारत में नवपाषाणिक संस्कृति के विषय में कतिपय नवीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की संस्कृति को अ ब स 3 उपकालों में विभाजित किया गया है। 1. प्रथम एक प्रथम अ मृदभान रहित नवपाषाण काल। 2. प्रथम ब नवपाषाणिक प्रारंभिक नवपाषाणिक काल। 3. प्रथम स नौ उत्तर नवपाषाणिक काल। यद्यपि बुर्जहूम में 2 एवं गुफ कराल में 3 उपकालों के साक्ष्य मिले हैं, तथापि कुल मिलाकर दोनों में कोई खास सांस्कृतिक अंतर नहीं है। प्रथम अकाल ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में करेवा या लोयस मिट्टी का जमाव हो जाने के बाद मृदभान रहित नवपाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आई। बुर्जहूम के उत्खनन में इस प्रकार का स्पष्ट स्तर नहीं मिला था। यद्यपि बुजहम के विषय में भी इस प्रकार की संभावना कुछ पुराविदों ने प्रकट की है। गुफकराल के उत्खनन से 35 सेमी से 1.10 मीटर मोटा जो जमाव मिला है, उसमें मिट्टी के बर्तनों का पूर्ण अभाव मिलता है। इस उपकाल को फर्श के दो स्तरों के आधार पर दो चरणों में विभाजित किया गया है। आवास प्रथम अ काल में करेवा मिट्टी के धरातल में गोल तथा अंडाकार गड्ढे खोद कर लोग निवास करते थे। बुजहम के प्रथम अ उपकाल में चित्र दो, बुजहम आवासी गड्ढा सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पृष्ठ संख्या 334 भी इसी प्रकार के गड्ढों में निवास के प्रमाण मिले हैं। दोनों ही पुरास्थलों पर गड्ढे ऊपर की तरफ सकरे तथा नीचे पेंदी में चौड़े मिलते हैं। गड्ढों की औसत गहराई 20 सेमी से 30 सेमी तक और मुंह के पास का व्यास 1.50 मीटर से 3.80 मीटर तक मिलता है। बुजहम में जो सबसे बड़ा गड्ढा है, उसका व्यास मुंह पर 2.74 मीटर तथा पेंदे में 4.57 मीटर है। बुजहम में इस प्रकार के 16 गड्ढे अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। खाना पकाने के लिए इन गड्ढों के समीप ही चूल्हों के साक्ष्य भी मिलते हैं। गड्ढों के अंदर आवास की फर्श चौरस है। गड्ढों में नीचे उतरने के लिए ताक या आले बने हुए हैं। इन गड्ढों के अंदर फर्श के ऊपर राख इत्यादि के मिलने से यह इंगित होता है कि इनका उपयोग रहने के लिए होता था। इन गड्ढों के किनारों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर स्तंभ गर्त पोस्ट होल्स मिलते हैं, जिनसे यह आभास होता है कि इन गड्ढों के ऊपर घास फूस का साजन भी संभवतः बनाया जाता था। गुफकराल के उत्खनन से बांस बल्ली की छाप से युक्त मिट्टी के टुकड़े मिले हैं, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि गड्ढों के किनारों पर निर्मित छाजन के कम से कम निचले भाग को छाप लीप कर मजबूत तथा पानी एवं बर्फ को रोकने योग्य बनाया जाता था। गुफकराल के प्रथम चरण में गड्ढों के फर्श को गेरू से प्रलेपित किया जाता था। गुफकराल के प्रथम चरण में गड्ढों के फर्श को गेरू से प्रलेपित किया जाता था। इस पुरास्थल के दूसरे चरण के गड्ढों में गेरू का प्रलेप नहीं मिला है। दूसरे चरण में कतिपय गड्ढों को दो भागों में विभाजित करने के प्रमाण मिले हैं। गड्ढों का आकार प्रकार भी पूर्ववर्ती चरण की तुलना में बड़ा मिलता है। उपकरण पाषाण उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर निर्मित कुल्हाड़ियां, बेधक, पाषाण वलय अथवा गदाशीर्ष लोढ़े तथा सील गुफकराल से प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा भेड़ बकरी एवं हिरण के सिंगों तथा पांव की हड्डियों पर बने हुए हड्डी 27 उपकरण भी मिले हैं। चित्र 3, बुजहम अस्थि उपकरण सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पृष्ठ संख्या 335। इनमें से अधिकांश वेधक तथा बाढ़ एरोहेड्स हैं, जो छिद्रक, कतिपय खुरचनी एवं नाकेदार सुई की गणना भी हड्डी के बने हुए उल्लेखनीय उपकरणों में की जा सकती है। श्रृंग का बना हुआ एक मनका और सिलखड़ी के बने हुए दो मनके भी प्रथम उपकाल की अन्य विशिष्ट पुरानिधियां हैं। पशुपालन गुफकराल के मृदभांड रहित प्रथम उपकाल में वहां के लोगों का जीवन प्रधान रूपे जंगली पशुओं के शिकार पर निर्भर था। जंगली भेड़ बकरी, गाय बैल, हिरण तथा भेड़िया एवं भालू की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। केवल भेड़ और बकरियों को ही इस उपकाल में अभी पालतू बनाया गया था। अनाज गुफकराल में प्लवन तकनीक, फ्लोटेटिन टेक्निक के माध्यम से जौ, गेहूं तथा मसूर के कार्बनीकृत या अधजले दाने प्राप्त हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि जौ, गेहूं एवं मसूर के दानों का खाद्यान्न के रूप में महत्व भलीभांति ज्ञात हो चुका था, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि इनके जंगली पौधों से दाने एकत्र किए जाते थे अथवा सीमित क्षेत्र में इनकी कृषि प्रारंभ हो चुकी थी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम उपकाल से कृषि कार्य में सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रथम ब काल प्रथम अ काल के पश्चात बिना किसी व्यवधान एवं अंतराल के प्रथम ब काल गुफकराल नामक पुरास्थल पर प्रारंभ होता है। इस काल का लगभग 40 सेमी मोटा सांस्कृतिक जमाव मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में हस्तनिर्मित मृदभांडों के प्रचलन तथा गड्ढों में निवास के स्थान पर समतल धरातल के ऊपर मकान बनाने की प्रथा का उल्लेख किया जा सकता है। बुर्जहोम के प्रथम ब काल को इसका समकालिक माना जा सकता है। आवास ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपकरण में लोगों ने गड्ढों में निवास की दीवारें बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस काल के मकान अपेक्षाकृत बड़े तथा आयताकार थे। बुर्जहोम में इस काल के मकानों की फर्श पर गैरिक रंग का प्रलेप मिलता है। गुफकराल में फर्श को साफ सुथरा बनाने के लिए 6-7 सेमी मोटा पीली मिट्टी का उपयोग किया गया है और किनारे किनारे चूने का प्रयोग किया गया है। बुर्जहोम के मकानों में चबूतरे बने हुए मिले हैं और मकानों को कई कमरों में विभाजित करने वाली दीवारें भी उपलब्ध हुई हैं। घरों में बुर्जहोम में चूल्हे सील लोढ़े एवं मिट्टी के बर्तन आदि के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम में प्रथम व काल में अंत्येष्टि संस्कार मृतकों को दफनाकर करने के भी साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। गुफकराल से अभी तक अंत्येष्टि के प्रमाण नहीं मिले हैं। मिट्टी के बर्तन इस काल में हस्तनिर्मित मृदभांडों का प्रचलन हो गया था। धूसर पात्र परंपरा ग्रे वेयर के सर्वाधिक ठिकरे मिलते हैं। रुक्ष तथा फीके पृष्ठ संख्या 336 लाल रंग की पात्र परंपरा के भी कतिपय नमूने उपलब्ध होते हैं। बर्तन अच्छी तरह तैयार मिट्टी से निर्मित नहीं है, ये भली भांति पक्के भी नहीं है। इनकी पेंदी में चटाई की छाप का अलंकरण मिला है तथा बर्तनों की बारी पर चुटकी से दबाकर बनाई गई डिजाइन मिलती है। बर्तनों के बाहर तथा भीतर दोनों ओर नरकुल या सरकंडे की छाप अंकित मिलती है। गुफकराल से लाल रंग की पात्र परंपरा में साधार तस्तरी डिश ऑन स्टैंड के आधार का एक टुकड़ा मिला है। चित्र 4 बुर्जहोम मृदभांड सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पृष्ठ संख्या 337। उपकरण बुर्जहोम के प्राप्त उपकरणों में कुल्हाड़ियां, छेनियां, बसुले, खुरपा अथवा गंडासा, हार्वेस्टर, गदा शीर्ष तथा कुदाल आदि उल्लेखनीय हैं। गुफकराल से एक पाषाण निर्मित बेधक, एक खंडित गदाशीर्ष तथा हड्डी के बने हुए 19 उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरणों में अधिकांश ओपदार बेधक पॉलिश्ड पॉइंट्स हैं और केवल 2 स्क्रेपर हैं। कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण गुफकराल से नहीं मिले हैं। चित्र 5 बुर्जहोम पाषाण उपकरण सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पशुपालन। गुफकराल के उत्खनन से प्रथम ब काल से पशुओं की जो हड्डियां मिली हैं, ये पालतू भेड़ बकरी तथा छोटे सींग वाले मवेशियों की हैं। इस काल में भी भेड़ बकरी का प्राधान्य प्रतीत होता है। भेड़ का आकार जंगली भेड़ की तुलना में कुछ छोटा हो जाता है। कुत्ते की हड्डियां भी मिली हैं। हिरण, साकिन, इबेक्स तथा भालू की हड्डियां यह इंगित करती है कि शिकार का अभी भी इनके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। बुर्जहोम में एक शिला पट्ट पर धनुष बाण से शिकार का दृश्य अंकित मिला है। अनेक हड्डियों के अड्डियों में हलाल करने के चिन्ह मिलते हैं। पक्षियों में मुर्गे को भी पालतू बनाया गया है। बुर्जहोम में कुत्ते, भेड़िए तथा साकिन की हड्डियां विधिवत दफनाई हुई मिली हैं। पृष्ठ संख्या 338 कृषि। जो गेहूं एवं मसूर के अतिरिक्त इस काल में मटर के भी दाने प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार पशुपालन तथा कृषि की मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रचलन का संकेत मिलता है। चित्र 6 बुर्जहोम मानव समाधान सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शवाधान बुर्जहोम के उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाण काल के द्वितीय चरण से संबंधित मनुष्यों तथा पशुओं के पूर्ण प्राइमरी एवं आंशिक सेकेंडरी शवाधान के साक्ष्य आवासक क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। गुफकराल से शवाधान के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। समाधियां या कब्रें गोलाकार अथवा अंडाकार गड्ढों के रूप में अधिकतर प्राप्त होती हैं। पूर्ण समाधियों में विस्तीर्ण शवाधान एक्सटेंडेड इनह्यूमिटेशन मिलता है, जिनमें मृतक को चित लेटाकर पृष्ठ संख्या 339 दफनाया गया है। इन समाधियों से जो मानव कंकाल मिले हैं उनके ऊपर गैरिक रंग छिड़का गया है। मानव कपालों को देखने से विदित होता है कि ये लोग संभवतः कपालक क्रिया ट्रेम्पेनिंग भी करते हैं। आदमियों के साथ कुत्ते बकरे आदि पालतू पशुओं को भी दफनाया जाता था। आंशिक शवाधान में कतिपय चुनी हुई मानव अस्थियों को दफनाया जाता था। इनके अतिरिक्त पशुओं की भी पूर्ण तथा आंशिक स्वतंत्र समाधियां मिली हैं। कुत्ता भेड़िया तथा हिरण की समाधियां प्राप्त हुई हैं। एक पशु समाधि में 5 जंगली कुत्ते तथा 1 हिरण के सिंह दफनाए हुए मिले हैं। मालिक के साथ तथा स्वतंत्र रूप से पशुओं को दफनाने की प्रथा चीन की नवपाषाणिक संस्कृति में भी मिलती है। चित्र 7 बुर्जहोम कुत्तों का शवाधान सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रथम स काल गुफकराल के उत्खनन से प्राप्त नवपाषाणिक उपकरण पुरावशेषों के तीसरे चरण को उत्तर नवपाषाणिक कहा गया है। इस उपकाल से संबंधित लगभग 70-80 सेमी मोटा आवासीय जमाव मिलता है। इस सांस्कृतिक जमाव में कूड़े कचरे के अनेक गड्ढे मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 340 आवास इस काल में भी मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर की दीवालों के मकान मिलते हैं। मकानों के फर्श पर चूने का गाढ़ा प्रलेप पूरे आवासक क्षेत्र में मिलता है। छाजन घास फूस तथा बांस बल्ली का संभवतः होता था। मिट्टी के बर्तन इस उपकाल में कई प्रकार की पात्र परंपराएं प्रचलित थी। धूसर घर्षित धूसर बर्निस्ड ग्रे वेयर तथा फीके रंग की लाल पात्र परंपराएं हस्त निर्मित मृदभांड परंपराएं थी। इनके अलावा काली घर्षित पात्र परंपरा ब्लैक बर्निस्ड वेयर चाक निर्मित थी। गोलाकार छिछले कटोरे गहरे कटोरे बोतल की भांति सकरे मुंह वाले घड़े मोटी पेंदी वाले छिछली थालियां या प्लेट आदि प्रमुख पात्र प्रकार हैं। घर्षित पात्र परंपरा में साधार तस्तरी भी मिलती है। बर्तनों की पेंदी में चटाई तथा बटी हुई रस्सी की छाप, बाहरी सतह पर सरकंडों की छाप एवं चुटकी से दबाकर बारी पर निर्मित डिजाइने एवं तिर्यक डिजाइने उल्लेखनीय अलंकरण विधाएं हैं। उपकरण एक अर्ध निर्मित प्रस्तर कुल्हाड़ी को छोड़कर इस उपकार से अत्यल्प संख्या में नवपाषाणिक बड़े उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल में पाषाण निर्मित 14 वेधक प्राप्त हुए हैं। अन्य पाषाणिक उपकरणों में 2 छिद्र युक्त खुरपे या गड़ासे गोफन पाषाण सील लोढ़े तथा मिट्टी एवं पाषाण दोनों के बने हुए तकुए आदि की गणना की जा सकती है। हड्डी के बने हुए सर्वाधिक 41 उपकरण इसी उपकाल से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश पॉलिशदार 80 वेधक हैं। वेधकों की नोक को आग में सेककर मजबूत तथा नुकीला बनाया गया है। मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां हड्डी तथा पत्थर के मनके अन्य महत्वपूर्ण पुरानिधियां हैं। इस काल के ऊपर के स्तर से प्राप्त तांबे की एक कुंडली शीर्ष वाली पीन की भी गणना विशिष्ट पुरानिधियों में की जा सकती है। पशुपालन इस उपकाल तक आते आते पशुपालन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भेड़ बकरी तथा मवेशी पूर्ण रूपेण पालतू बना लिए गए थे। बकरियों तथा मवेशियों के आकार काफी छोटे हो गए थे। भेड़ बकरियों की इस काल में भी बहुतायत थी। इस उपकाल में सुअर खरगोश मछली चूहे आदि की भी हड्डियां मिली हैं। इस प्रकार कतिपय छोटे छोटे जीवों तथा जलचरों का शिकार इस काल में भी होता रहा। कृषि खुरपी या गंडासे की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि इस काल में कृषि कर्म में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। जौ, गेहूं, मटर और मसूर इस काल में भी प्रमुख खाद्यान्न थे। कालानुक्रम। उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के कालानुक्रम निर्धारण के लिए बुर्जोम तथा गुफकराल से प्राप्त 7 रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। गुफकराल की तिथियां बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ की प्रयोगशाला द्वारा और बुर्जोम की तिथियां टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बम्बई पृष्ठ संख्या 341 की प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित की गई है। रेडियो कार्बन तिथियों के अनुसार बुर्जोम के पुरास्थल पर 2375 ईसा पूर्व के लगभग सर्वप्रथम निवास प्रारंभ हुआ। इस पुरास्थल से ज्ञात अनेक रेडियो कार्बन तिथियों से सिद्ध होता है कि लगातार 1400 ईसा पूर्व तक मानव आवास का अविच्छिन्न क्रम चलता रहा। गुफकराल से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं वे द्वितीय एवं तृतीय उपकाल से संबंधित है। तृतीय चरण के प्रारंभ की तिथि लगभग 2000 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। मृदभांड रहित प्रथम उपकाल के आरंभ का कालानुक्रम 400 से 500 वर्ष पहले रखा जा सकता है। इस प्रकार इस बात की प्रबल संभावना है कि उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के प्रारंभ की तिथि 2500 ईसा पूर्व और अंत की तिथि 1400 ईसा पूर्व फिलहाल निर्धारित की जा सकती है। सादृश्य तथा उत्पत्ति। बीडी कृष्णस्वामी ने उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित किले गुल मोहम्मद नामक पुरास्थल की नवपाषाण काल की संस्कृति से अनुप्राणित माना था। पाकिस्तान की सराय खोला स्वात घाटी में स्थित गली गई तथा लोबनार नामक पुरास्थलों के नवपाषाणिक स्तरों से प्राप्त घर्षित कृष्ण और सेलेटी मृदभांडों एवं बुर्जोम के मृदभांडों में कुछ समता दिखलाई पड़ती है, किंतु इस संस्कृति में कई विशिष्ट उपादान विद्यमान हैं जिनकी प्रेरणा कदाचित उत्तर की ओर स्थित किसी बाहरी संस्कृति से प्राप्त हुई होगी। उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के हड्डियों और औजारों के आकार 2 छिद्रों वाले आयताकार खुरपे या गंडासे गड्ढों में रहने की परंपरा तथा कब्रों में मालिक के साथ पशुओं विशेषकर कुत्तों को दफनाने की प्रथा आदि ये विशिष्ट तत्व उत्तरी चीन गणराज्य की नवपाषाण काल की संस्कृति में विशेष रूप से उपलब्ध होते हैं। कुत्ते की कब्र के प्रमाण मंचूरिया की एंगेंग सी संस्कृति से भी प्राप्त हुए हैं। ऊपर अमूर नदी की घाटी में स्थित शिल्का गुफा संस्कृति में कुत्ते को धार्मिक अनुष्ठान के पशु का स्थान प्राप्त था। इस क्षेत्र में कुछ समय पूर्व तक कतिपय मानव समुदायों में कुत्तों की बलि देकर उनके मालिकों के साथ उन्हें दफनाया जाता था। उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति में प्राप्त हड्डियों के बने हुए उपकरण विशेषकर मत्स्य भाले की तरह के हड्डियों के उपकरण उत्तरी चीन गणराज्य की नवपाषाण काल की संस्कृति में भी मिलते हैं। बुर्जोम से प्राप्त पाषाण की कुल्हाड़ियों की तरह की पाषाण कुल्हाड़ियां मंगोलिया की नवपाषाणिक संस्कृति में प्राप्त होती हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तरी भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति के हस्तनिर्मित मृदभांडों की समानता उत्तरी चीन के नवपाषाणिक मृदभांडों से बिल्कुल नहीं है। अल्विन दंपत्ति तथा बीके थापर ने ऐसी संभावना प्रकट की है कि उत्तरी भारत की नवपाषाणिक संस्कृति की उत्पत्ति में उत्तरी चीन गणराज्य की नवपाषाण काल की संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 342। जिस समय जम्मू कश्मीर प्रदेश में नवपाषाण संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ उस समय सिंधु घाटी तथा राजस्थान के क्षेत्रों में प्राक हड़प्पा संस्कृतियां विद्यमान थीं। इन दोनों के बीच परस्पर कोई संबंध था अथवा नहीं इसके साक्ष्य अत्यल्प हैं। बुर्जोम से लगभग साबुत एक ऐसा बड़ा घड़ा मिला है जिसकी गर्दन बोतल जैसी है। इस घड़े की बाहरी सतह पर चित्रकारी मिलती है जो देखने में बैल के सींगों की तरह प्रतीत होती है। पाकिस्तान में स्थित कोट डीजी और गुमला नामक पुरास्थलों के प्राक हड़प्पा स्तर से इससे मिलता जुलता चित्रण मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्य है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा के भी प्राक हड़प्पा स्तर से इस तरह की चित्रकारी मिट्टी के एक बर्तन पर मिली है। गुफकराल के नवपाषाणिक सांस्कृतिक काल के तीसरे चरण के ऊपरी स्तर से कुंडलित शीर्ष वाली जिस तरह की तांबे की एक पिन मिली है, उसी तरह की तांबे की एक पिन चानू दड़ो से प्राप्त हुई थी। क्या इनको बाह्य संपर्क का द्योतक माना जा सकता है? यदि संपर्क था तो उसका क्या स्वरूप था? इन और इन्हीं की तरह के अन्य प्रश्नों का उत्तर अनुसंधान की वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है। विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति। उत्तर प्रदेश के गांगेय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित पठारी भाग को प्रायः बुंदेलखंड तथा बघेलखंड, इन दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यह क्षेत्र मध्य भारत के पठारी भाग और गांगेय मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। किसी एक उपयुक्त तथा सार्थक नाम के अभाव में इस क्षेत्र को यहाँ पर फिलहाल उत्तरी विंध्य क्षेत्र के नाम से अभिहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र से दो प्रकार की नवपाषाणिक कुल्हाड़ियाँ समय समय पर प्रतिवेदित होती रही हैं। मिर्जापुर और बांदा जिलों तथा इनके समीपवर्ती क्षेत्रों से नुकीले समंतात वाली त्रिभुजाकार कुल्हाड़ियाँ खोजी गई हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की कुल्हाड़ियों से आकारगत समता होते हुए भी इनके वास्तविक पुरातत्व परिप्रेक्ष्य के विषय में जानकारी नहीं है। इलाहाबाद जिले के दक्षिणी भाग और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त गोलाकार समंतात वाली नवपाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत से मिलने वाली नवपाषाणिक कुल्हाड़ियों से आकारगत तादात्म्य रखती हैं। सन 1972-73 और इसके बाद किए गए पुरातात्विक अन्वेषकों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के दक्षिणांचल में विद्यमान मेजा तहसील में स्थित बेलन घाटी में कोलडिहवा, पचोह, महगड़ा तथा बेलन की सहायक सहिता अदवा की घाटी में इंदारी और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी की घाटी में स्थित कुंजुन एवं ललनहिया नामक पुरास्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इन पुरास्थलों में से कोलडिहवा, पचोह और महगड़ा का उत्खनन हो चुका है। इस प्रकार इस क्षेत्र से पृष्ठ संख्या 343 मिलने वाली गोलाकार समंतात वाली नवपाषाणिक कुल्हाड़ियों के पुरातात्विक संदर्भ के विषय में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इलाहाबाद नगर से दक्षिण पूर्व की दिशा में लगभग 85 किमी की दूरी पर बेलन नदी के बाएं तट पर कोलडिहवा, दाहिने तट पर महगड़ा तथा इन दोनों पुरास्थलों से थोड़ी दूरी पर पश्चिम दिशा में पचोह नामक पुरास्थल स्थित है। इन पुरास्थलों की खोज तथा उत्खनन कार्य के संचालन का श्रेय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को है। सन 1964 में किए गए पुरातात्विक अन्वेषण के फलस्वरूप कोलडिहवा का टीला प्रकाश में आया, जो पूर्व से पश्चिम 500 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण 200 मीटर चौड़ा है। बरसाती नालों के कटाव के कारण कोलडिहवा का टीला कई भागों में बट गया है। इनमें से पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी टीलों पर सन 1972-73 से 1975 के बीच में उत्खनन हुआ। कोलडिहवा के टीले का 1.90 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव अपने अंतस्थल में तीन संस्कृतियों से संबंधित सामग्री छिपाए हुए है। ये संस्कृतियां हैं: एक नवपाषाणिक संस्कृति 45 सेमी मोटा जमाव, दो ताम्रपाषाणिक संस्कृति, तीन आरंभिक ऐतिहासिक काल की लौह युगीन संस्कृति। पचाहे तथा महगड़ा मात्र नवपाषाण काल की एकाकी संस्कृति वाले पुरास्थल हैं। पचोह जो कोलडिहवा के उत्तर पश्चिम में लगभग 2.50 किमी की दूरी पर बेलन नदी के दाहिने तट पर स्थित है, वहां पर सन 1975-76 में सीमित पैमाने पर उत्खनन कराया गया, जिससे 60 सेमी मोटा नवपाषाणिक जमाव प्रकाश में आया। महगड़ा नामक पुरास्थल की खोज सन 1975-76 में हुई थी। सन 1976-77 एवं सन 1977-78 के दो उत्खनन सत्रों में इस पुरास्थल की अपेक्षाकृत विस्तृत पैमाने पर 1622 वर्ग मीटर क्षेत्र में खुदाई की गई। उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो 6.5 2.60 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमा ज्ञात हुआ। उसको कुल मिलाकर 6 निर्माण उपकालों में विभाजित किया गया है। आवास कुल डिहवा तथा महगड़ा के 9 पाषाणिक पुरास्थलों पर एक निश्चित क्रम विन्यास में स्तंभ गर्त मिले हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि रहने के लिए लकड़ी के लट्टों को जमीन में गाड़कर गोलाकार या अंडाकार झोपड़ियों का निर्माण किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त सरकंडों की छाप युक्त जली हुई मिट्टी के टुकड़ों से यह इंगित होता है कि छाजन घास फूस तथा सरकंडों आदि का बनवाया जाता था। महगड़ा के उत्खनन से अभी तक 20 झोपड़ियों के साक्ष्य ज्ञात हो चुके हैं। झोपड़ियों का व्यास डायमीटर 4.30 मीटर से 6.40 मीटर तक मिलता है। झोपड़ियों के फर्श पर हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों के ठीकरे, गोलाकार सामंतांत वाली 9 पाषाणिक कुल्हाड़ियां, हथौड़े, गदाशीर्ष, शील लोढ़े, गोफन पत्थर, स्लिंग बॉल, लघु पाषाण उपकरण, मिट्टी की बनी हुई पृष्ठ संख्या 344, गुरिया और पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। 2 या 3 झोपड़ियों को मिलाकर एक घर बनता है। घरों का निर्माण भी एक सीधी पंक्ति में न करके वलयाकार रिंग सेप्ट ढंग से करते थे। चित्र 8, कोल्डिहवा, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, सौजन्य बीडी मिश्र, 1977। मिट्टी के बर्तन विंध्य क्षेत्र के सभी 9 पाषाणिक पुरास्थलों से हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों में सालनन के रूप में धान की भूसी एवं पुआल के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राप्त मृदभांड 4 प्रकार के हैं, 1 डोरी छाप मृदभांड, 2 खुरदरे मृदभांड, 3 चमकाए लाल मृदभांड, 4 चमकाए काले मृदभांड। डोरी छाप मृदभांड इस नवपाषाणिक संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड है। इनकी बाहरी सतह पर डोरी अथवा बटी हुई रस्सी की छाप मिलती है। इस वर्ग के मृदभांड हल्के लाल रंग तथा अधिकांशतः मूर्ति गढ़न थिक फैब्रिक के हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों में छिछले एवं गहरे कटोरे, टोटीदार कटोरे तथा घड़े विशेष उल्लेखनीय हैं। दूसरे वर्ग के पात्रों का रंग भी हल्का लाल है, लेकिन इनके बाहरी भाग विशेषकर निचले हिस्से को जानबूझकर खुरदरा बनाया गया है। इस श्रेणी के बर्तनों को आड़े तेछे तथा अंगुष्ठ नख डिजाइनों से अलंकृत किया गया है। विविध प्रकार के कटोरे, छिछले तसले, तस्तरियां, चौड़े मुंह की हांडियां तथा घड़े प्रमुख पात्र प्रकार हैं। तीसरे एवं चौथे, पृष्ठ संख्या 345, वर्ग के बर्तनों की भीतरी एवं बाहरी दोनों सतहों को पकाने के पूर्व किसी चीज से रगड़कर चमकाया गया। लाल एवं काले दोनों ही प्रकार के मृदभांड इन श्रेणियों में मिलते हैं। कटोरे, तस्तरियां, तसले तथा मृदभांड प्रमुख पात्र प्रकार हैं, जिन पर उत्कीर्ण एवं चिपकवा दोनों प्रकार के अलंकरण मिलते हैं। चित्र 9, महगड़ा, पाषाण उपकरण, सौजन्य, डी मंडल, 1980।